गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल।
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवद गीता की जय हो। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट कुछ दिनों से हमारा सरल भगवद गीता सार रूप में कोर्स जो है वो आरंभ हो चुका है। उसमें हमने फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ बहुत ही प्यारी तरह से कुछ मिथ, जो मिथ हमारे दिमाग में होते हैं कि भक्ति को लेकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन पर हम गहराई से चर्चा कर चुके हैं। देन उसके बाद फाउंडेशन कोर्स में हमने बहुत प्यारे प्यारे मॉडल की डिस्कशन की, और उसके बाद हमारे सीनियर डिवोटीज के माध्यम से चैप्टर 1, जिसमें हमने समझा कि चंचल मन के कारण अर्जुन जो है क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, और भगवान ने उसे रोल मॉडल डालने के लिए उसे उसके अपनों के खिलाफ उसे सामने उसके रखकर दिखाया क्या करने के लिए, ताकि वह कलयुग में रहने वाले जीवों के लिए भगवत ज्ञान दे सके। सेकंड चैप्टर में हमने अर्जुन के माध्यम से और हम सब ने भी भगवान की शरणागति को स्वीकार किया और भगवान जी को अपना गुरु माना। जैसे अर्जुन ने माना, तो भगवान ने पहला ज्ञान क्या दिया, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। थर्ड चैप्टर में बड़ी ही प्यारी तरीके से हमने नताशा जी के माध्यम से समझा था कर्म योग को, कर्म कैसे करने हैं, हर एक कर्म प्रभु के साथ जुड़कर करना है। और देखिए आज जो चैप्टर है वो है अलौकिक ज्ञान। ये डिवाइन नॉलेज किसे मिलेगी जो पीछे अपने कई जन्मों से, देखिए ये यात्रा कई बार हमारे मेंटर्स हमें बताते हैं ना कि भगवद गीता सुनने को अगर मिल रही है, दैट मीन्स पिछले जन्मों में जो यात्रा में हम कुछ ना कुछ कर्म योग करके आए हैं, तभी किसी को ये डिवाइन नॉलेज मिलेगी। तो आज मैं श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ और अपने सारे मेंटर्स के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है अलौकिक ज्ञान। वैसे तो मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं भगवान की इन बातों के ऊपर कोई वार्ता कर पाऊं, बट मैं ये भी मानती हूँ कि गुरुओं की कृपा से और भगवत कृपा से हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। अंश और अंशी एक तरह से कुछ भी कर सकता है, तो मैं उनके आगे नमन करती हूँ, वो मेरी बुद्धि में आए और इस अलौकिक ज्ञान में क्या संदेश वो देना चाहते हैं मेरे वाणी में आकर आप सबके साथ वो साझा करें। और ये ज्ञान कोई मैंने अपने आप से नहीं सीख लिया, ये मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से ही सीखा है, जो उनसे सीखा है वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वेद प्रकाश जी की तरफ और अलौकिक ज्ञान का जो सार है उसका पहला पॉइंट समझते हैं। हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। अध्याय 4, अलौकिक ज्ञान, श्लोक नंबर 1। केवल भगवान के भक्त व मित्र ही अलौकिक ज्ञान को उनकी कृपा से समझ सकते हैं। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पहले तो हम सबको बहुत प्यारी तरह से इस ब्लेसिंग को लेना है। देखिए भगवान ने पहले ही पॉइंट में क्या बोला है, इस ज्ञान को भगवान के भक्त और मित्र वही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम जीते जागते, वैसे तो हम सब ने सुना होगा ना कि मृत्यु के समय किसी को 18वां अध्याय सुना दिया जाए भगवद गीता का तो उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान ने हम पर विशेष विशेष कृपा कर दी है कि हम जीते जागते भगवद गीता को सुन रहे हैं, ये डिवाइन नॉलेज। यहाँ भगवान ने कहीं भी क्राइटेरिया ये नहीं लगाया कि कोई मटेरियलिस्टिक पढ़ाई में बहुत ज्यादा सक्षम है उसे ये ज्ञान मिलेगा, नहीं। भगवान ने यहाँ कहा है जो मेरे भक्त हैं, और सिर्फ क्या इसी जन्म के, नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये यात्रा कई जन्मों की है, उन जन्मों में हम सब थोड़ी 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 भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं भक्ति के कारण, जैसे कर्म योग में हमने समझा था ना हमने पाप करने हैं और ना हमने पुण्य करने हैं, हमने तो दिव्य कर्म करने हैं। तो उस डिवाइन अकाउंट में हमने कुछ ना कुछ इकट्ठा किया था, उसी का रिजल्ट है कि आज हमें भगवान ने एटलीस्ट अपने रजिस्टर में हम सबको अपने भक्त और मित्र की कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम है। और ये क्यों होगा और कैसे होगा, हमने भगवद गीता को समझने से पहले ही क्लियर किया था ना कि भगवान की इन बातों को कौन समझ पाएगा, प्रभु की कृपा से, दूसरी भगवत गीता की कृपा से, वेद की कृपा से, तीसरी गुरुओं की कृपा से। देखिए फ्रेंड्स, हमने भगवद गीता जब नहीं पढ़ी थी क्या हम एक भी टाइम पे समझते थे कि हम दोनों का गहरा रिश्ता है? हमारे लिए तो कुछ भगवान जी का इस तरह से था कि मानो कोई चिराग का जिन है, थोड़ी बहुत भक्ति कर ली और वो हमें वो सब कुछ दे दें। लेकिन गुरुओं के माध्यम से हमें हमारे एक्चुअल मित्र उनसे मिलवाया गया, और किसके माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से। तो भगवान हम सबको ब्लेसिंग के तौर में ये सबसे विशेष विशेष कृपा के रूप में भगवद गीता प्रदान कर रहे हैं। तो इस ब्लेसिंग को काउंट करने में इतने खो जाइए कि जीवन में अगर थोड़े बहुत दुख तकलीफ है या कोई भी ऐसी काम हो रहा है जिसको लेकर हम रोते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको भूल जाना चाहिए और ये याद रखना है कि भगवान जी मुझे अपना भक्त और मित्र मान रहे हैं, चाहे मुझे समझ आ रही है चाहे मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो मुझे ये अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
हरी हरी बोल। नंबर टू, अधर्म का नाश, धर्म की रक्षा व भक्तों के द्वारा उद्धार हेतु प्रभु हर युग में अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए भगवान इतने शक्तिशाली है ना, वैसे तो वो अपनी एक आईब्रो हिला दे ना तो करोड़ों ब्रह्मांडों का विध्वंस हो सकता है, लेकिन भगवान जी का इस धरा पर बार बार आना, हम सब बीआर चोपड़ा का सीरियल देखते हैं ना, तो वहां पर आता था यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब उसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, शॉर्ट में आगे वापस आ जाते हैं क्योंकि हम सार रूप में इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अधर्म का नाश करने के लिए, देखिए मुझे ना अपनी स्कूल टाइम याद आ रही है, हमारा स्टाफ रूम और प्रिंसिपल का जो रूम था ना वो बिल्कुल हमारी क्लास के ऑपोजिट था। तो जिस दिन हमारी टीचर कोई मिस होती थी तो उस दिन हम सब बच्चे इतना हुड़दंग मचाते थे कि हमारे प्रिंसिपल को हमारी क्लास में आना पड़ता था और वो हमें पनिश भी करते थे। वैसे ही भगवान जी क्या है, पूरे ब्रह्मांड के प्रिंसिपल, और हम जब देखिए अधर्मी बन जाते हैं मीन्स नेगेटिविटी में धस जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तब भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं ताकि वह धर्म की रक्षा कर सके। देखिए भगवान जी का पर्पस सिर्फ अधर्म का नाश करना नहीं होता कि इस धरा पर वो अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं, अधर्मियों का नाश करने के लिए आते हैं, नहीं, भगवान जी भक्तों का उद्धार करने के लिए भी आते हैं। हर युग में, जैसे हम प्रीति जी के माध्यम से समझते हैं ना कि चार युग होते हैं, सतयुग, सतयुग में भगवान कई बार प्रकट हुए हैं। अभी रिसेंट हमने नरसिंह जयंती पर नरसिंह भगवान जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनी, है ना। तो प्रहलाद महाराज जी को उनकी रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। फिर भगवान जी त्रेता युग में किस युग किस रूप में आए, राम के रूप में आए और रावण का उन्होंने वध किया। द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए और कंस का, शिशुपाल का, दंत वक्त का, लिस्ट इज गोइंग ऑन। महाभारत में इतने सारे अधर्मियों का भगवान ने क्या किया, उद्धार किया। और कलयुग में स्पेशली नाम भगवान के रूप में, नाम संकीर्तन युग धर्म से हम सबको वाकिफ कराने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी पधारे हैं, अभी जस्ट 550 साल पहले। इसीलिए तो देखिए, हम सब ने कहीं ना कहीं फील किया होगा, मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी पर्सनल फर्स्ट लर्निंग इसी श्लोक को लेकर होती है। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, देखिए उन युगों में जो राक्षस होते थे वो सामने खड़े होकर लड़ाई करते थे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं ना एबीसीडी मॉडल में, अंदर ही कौरव हैं, अंदर ही पांडव हैं, अंदर ही पॉजिटिविटी और अंदर ही नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब नाम भगवान जी आकर उनका संहार करते हैं और किसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि अंदर हमारे कौन है, परमात्मा का अंश, उनका मित्र, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हर युग में पधारते हैं अलग अलग रूपों में। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, अगर हम नाम लेने लग जाएं तो मुझे लगता है कि कई सदियां बीत जाएं, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हर कथा में भगवान ने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से बहुत सारे अवतार लिए हैं। अगर आप सभी इन अवतारों की लीलाओं को सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए एवरी सैटरडे प्रीति जी के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम महापुराण महायज्ञ चल रहा है, उसका पहला स्कंध हम कर चुके हैं और आने वाले समय में 24 अवतारों का सुंदर वर्णन और कैसे भगवान ने भक्तों की रक्षा की, ये प्रीति जी हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनाती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि भगवान कभी डायरेक्ट अवतार लेते हैं और कभी इनडायरेक्ट अवतार लेते हैं हम सबकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। इन शॉर्ट कहा जाए तो अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करने के लिए। और मैं अगर जरा सा पूछूं तो मैसेज बॉक्स में आप सभी आंसर लिखकर बताएंगे, गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर भगवान ने किसको एम्पावर किया है, निखिल जी को, हम सब जो ट्रैक से भटके हुए लोगों के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का जो युग धर्म नाम संकीर्तन उसे आगे बढ़ाने के लिए, गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर्स को। तो मेरा शत शत नमन है हमारे गुरुओं के प्रति जो हम जैसे अधर्म में उलझे हुए लोगों को सही पथ दिखा रहे हैं, और ये हम पर विशेष कृपा भी प्रभु के माध्यम से ही हुई है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आगे बढ़ते हैं वेद प्रकाश जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
हरे राम हरि बोल। नंबर 3,
कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। नंबर 3 मैम पढ़ लीजिए। हरि बोल।
पॉइंट 3, प्रभु के कर्म व जन्म दोनों ही दिव्य हैं, ऐसा जानने वालों को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अभी रिसेंट हमने 2 दिन पहले हिरण्यकश्यप की स्टोरी हमारे मेंटर्स के माध्यम से सुनी थी नरसिंह जयंती के दिन। देखिए भगवान के कर्म क्या होते हैं, अलौकिक, बहुत ही डिवाइन। जैसे आप इमेजिन करके देखिए भगवान कैसे रूप धारण कर लेते हैं, हाफ मैन और हाफ लॉइन के रूप में, और आकर हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य जिसने कई 100 वर्षों, कहते हैं 100 दिव्य वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की थी, है ना, कोई उसके आगे नहीं टिक पाता था, है ना, इतना शक्तिशाली, भगवान ने उसको कैसे मार दिया, अपने नाखूनों से उसकी आंतें फाड़ दी, है ना। वैसे तो भगवान ने उसे मारा है, लेकिन भगवान का ये कर्म आज भी हम स्मरण करते हैं। किस रूप में, भगवान नरसिंह रूप के रूप में आकर उनका आविर्भाव हुआ है, उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य हुए हैं। देखिए नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं और दुनियादारी में एक बेबी कैसे बॉर्न होता है हम सब वाकिफ हैं। तो भगवान जी की जो लीलाएं हैं ये उनके कर्म ये उनका जन्म इसे का क्या कहा जाता है, इनको लीलाएं कहा जाता है। लीलाओं के माध्यम से वो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक युग में आते हैं और हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए भगवान श्री कृष्ण, कार्तिक मास में हमने गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में दामोदर लीला का पाठ इतना ज्यादा श्रवण किया है कि अगर हम कोई भी एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लेना गोलोक एक्सप्रेस में कि दामोदर लीला कौन सी है, देखिए भगवान छोटे से बच्चे जिन्होंने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, जिन्होंने राम के रूप में कितने योजन समुद्र को लांग कर लंका पार पहुंचकर रावण का वध कर दिया, आज वो शिशु रूप में यशोदा मैया से मार के कारण डर रहे हैं और रो रहे हैं, है ना। ये कितनी प्यारी लीला है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इन लीलाओं में कोई गोते लगाएगा, जितनी इन लीलाओं को कथाओं को कोई श्रवण करेगा फिर वो क्या होगा, उसका स्मरण, उसके स्मरण में हल्की सी कोई बात छेड़ो, अभी जैसे मैं बोलूंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास की, है ना, कहां रास की हम सब जानते हैं, एकदम से माइंड में क्लिक हो आ जाएगा और वो गोपी गीत भी याद आ जाएगा, है ना। दुनियादारी की वो बातें सब भूल जाएंगी, ये बातें जो बार बार रेपिटेशन में भगवान जी की बातों को लीलाओं को उनके जन्म से लेकर रिलेटेड कथाएं, है ना, उनके आविर्भाव पर जो रिलेटेड कथाएं उनको सुनता रहेगा उसे डेफिनेटली भगवान कह रहे हैं भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मैम।
हरी हरी बोल। पॉइंट फोर, हम जैसे भाव से भगवान की पूजा करेंगे वैसे ही प्रभु हमें फल दे। हरी हरी बोल, हरी
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए फ्रेंड्स हमारे मेंटर्स ना हमेशा हमें पता क्या कहते हैं, करो और पाओ। सत्संग में आइए, असीम शांति को, अनुभूतियों को आप फील करोगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान जी भी मैसेज देना चाहते हैं, जिस भाव से भगवान की पूजा करेंगे वैसा ही फल हम प्राप्त करेंगे। अब हम सोचें कि हम आधे घंटे का सत्संग लगा ले, ठीक है, और बाकी का जितना भी टाइम है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, है ना, इंस्टाग्राम पर, चुगली में, निंदा में, क्या हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, वो असीम शांति, है ना, वो मिलेगी। हम भाव लगा के बैठ जाते हैं भगवान से कि हम एकदम से सिनर टू सेंट बन जाए, क्या हमें वो मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता कि हमें मिल पाएगा, है ना। तो भगवान हम सबको यहाँ मैसेज देना चाहते हैं, है ना, कि जैसा तुम भाव लगाओगे वैसा ही रिजल्ट मैं तुम्हें दूंगा। इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर कोई एक घंटे का सत्संग लगाए तो उसको बदले में भगवान कुछ नहीं देंगे, एक घंटे की शांति उसे मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, है ना। तो यहाँ हम सबको मैसेज है हमारा सरेंडर, हम कैसा सरेंडर करते हैं, क्योंकि सबका सरेंडर सेम नहीं होता। देखिए मेरी डिजायर्स, मेरा सरेंडर करने का तरीका अलग होगा, नीलम जी का सरेंडर करने का तरीका अलग होगा, है ना, और भाव भी सबके अलग अलग होंगे। जैसे कईयों को आपने सुना होगा कि उनको भगवान उनके बच्चों की तरह लगते हैं, वो क्या करते हैं, बाइट तोड़ते हैं और भगवान जी को खिलाते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को खिलाते हैं, और कईयों को ऐसा लगता है कि ये प्रभु हैं, ये देनहार हैं, ये हम सबको देते हैं, वो थाली उनके सामने सजाएंगे और भगवान से आग्रह करेंगे प्रभु आइए भोग स्वीकारिए, ना, वो दास रूप में सेवा करेंगे। तो जैसा जैसा किसी का भाव होगा वैसा वैसा भगवान जी उनको रिजल्ट देंगे। अगर कोई भगवान की भक्ति, जैसे हम लोग ना बचपन से ही दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाइन आती थी लास्ट में कि एक वैश्य था और एक राजा था, उन्होंने माता रानी की बहुत तपस्या की, एक ने मांगा अखंड ज्ञान, इस ज्ञान से मैं अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, और दूसरे ने क्या मांगा, मुझे राज चाहिए। तो माता रानी ने दोनों को एक जैसा जो जो उन्होंने मांगा वो उनको दिया। वैसा ही हम भगवान से क्या मांगते हैं, हम मटेरियल डिजायर्स की फुलफिलनेस मांगते हैं या फिर हम भगवान से शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति मांगते हैं, ये हम पर आधारित है कि हम कैसा भगवान के साथ भाव लगा रहे हैं। देखिए यहाँ एक खंडन उस चीज का भी होता है कि जब हम कहते हैं ना मैं चल रहा हूं, वो नहीं चल रहा, चल सब रहे होते हैं। किसी ने भगवान जी से चीजें पाने के भाव से उनसे प्रेम करना या जो भी है थोड़ा बहुत करना, कोई भगवान से शुद्ध प्रेम निष्काम भाव से कर रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है प्रभु जिस हाल में रखो तुम जानो, बस मैं तुम्हारा नाम स्मरण करना कभी ना भूलूं। तो यहाँ पर उस भाव को भी हम खंडित करते हैं कि इस रास्ते पे हर कोई चल रहा है, कभी भी किसी को जजमेंट करने की जो हमारी जो नेचर है ना उसको हमें चेंज करना चाहिए। जैसी आप डिजायर भगवान से रखेंगे वैसा फल प्रभु हमें देंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।
हरी हरी बोल। पॉइंट फिफ्थ, बुद्धिमान मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, वह कर्म करते हुए भी शोकी है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। भगवान ने बुद्धिमान मनुष्य यहाँ पर यूज किया है। देखिए बुद्धिमान पता कौन होते हैं, जो दिव्य कर्म करते हैं। यहाँ शब्द आया कर्म और अकर्म। अपने गुरुओं जी गुरुओं के चरणों में नमन करती हूँ कि इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा अटकते थे कि ये कर्म अकर्म ये क्या होते हैं ना। देखिए जब भी कर्म शब्द आएगा मीन्स पाप या पुण्य होंगे ही होंगे, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो दिव्य कर्म करते हैं। वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे लेकिन अकर्म के भाव से। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे भगवान जी का ना श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है ना, अब मैं उसमें अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या मिनिमम या मैक्सिमम 5 घंटे भी मुझे देने पड़े तो मुझे लगता है कि मुझे देने चाहिए, मुझे उसी में आनंद आता है ना। वैसे तो दुनियादारी के हिसाब से ये काम वेलों का है और मुझे कई बार टॉन्ट भी बचता है कि ये तो वेली है इसीलिए लगी रहती है ना। लेकिन ये काम क्या हो रहा है, ना तो ये अच्छा है ना ये बुरा है, ये दिव्य कर्म हो रहा है। यही भगवान हम सबको मैसेज दे रहे हैं। हमारे चंबा में तो प्रचलन भी ये चल पड़ा है। जैसे देखिए किसी के घर में कोई फंक्शन है, कोई मुंडन है, कोई शादी है ना, डांस भी होगा पार्टी भी होगी, लेकिन जितने भी भगवत गीता के साथ जुड़े हैं वो कर्म में अकर्म कैसे करते हैं, घर में सत्संग रखवा लेते हैं, कीर्तन होता है, भक्त आते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, और क्या इससे कोई कर्म बंधन क्रिएट हुआ, नहीं। यहाँ भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं कि कर्म करते हुए लोग ऐसे योगी बन जाते हैं। उसी प्रकार जैसे हनुमान जी लंका गए, लंका वासियों को लगा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है ना, लंका में आग लगाई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जय श्री राम, अपनी पूंछ से पूरी लंका का दहन कर दिया, उनका कर्म क्या बन गया, दिव्य बन गया। तो ऐसा कर्म करते हुए वह नित्य योगी बन गए। यही भगवान हम सबको मैसेज देना चाहते हैं। अपनी प्रायोरिटी को समझिए, ये मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अपनी ड्यूटीज को भी निभाइए, कर्म भी कीजिए, लेकिन इस भाव से कि ये सब मैं ईश्वर की सेवा के लिए कर रहा हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट,
हरी हरी बोल। पॉइंट सिक्स, जो व्यक्ति आशीर रहित होकर फल की आसक्ति को त्याग कर और सदैव तृप्त रहकर कर्म करता है वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। आश्रय रहित होकर भगवान ने ये स्पेशल शब्द जो है यहाँ पर हाईलाइट किया। देखिए दुनियादारी में हम आश्रय कितना ढूंढते हैं, जितना थोड़ा सा भी किसी के साथ किसी का ना म्यूट, आई थिंक म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज ही को रही है। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दुनियादारी में हमारे साथ कोई भी इशू हो जाता है ना तो हम आश्रय ढूंढते हैं, फ्रेंड का, मदर का, सिस्टर का। कभी हमने भगवान जी का आश्रय समझा, जाना नहीं। यहाँ भगवान PhD के लेवल की बात कर रहे हैं ना, अलौकिक ज्ञान में अर्जुन को समझा रहे हैं और उसके माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति आश्रय रहित तो होकर फल की आसक्ति से त्याग कर कर्म करता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएगा है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएगा बिल्कुल भी, वो सिर्फ ये सोचकर करेगा कि मेरे साथ है रघुनाथ, मुझे डर काहे का, मेरे आश्रित कौन है? सिर्फ और सिर्फ श्री हरि हैं। दुनियादारी से कोई आश्रय नहीं लगाएगा, खुद को शरीर नहीं मानेगा, ये सोचकर चलेगा बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। और थर्ड लाइन में क्या कह रहे हैं? सदैव तृप्त रहकर। देखिए, शरीर के माध्यम से व्यस्त रहना है, हर समय व्यस्त रहना है, कभी हमें हरी कृपा मिलेगी, है ना, कृपा के रूप में सुख भी मिलेंगे, और कभी हरी इच्छा, कभी कोई दुख भी आ जाएगा, लेकिन दोनों में समभाव को जो मेंटेन करता है, तृप्त रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। जैसे प्रसाद में अगर मीठा हलवा मिल गया तो वो भी चटकारों के साथ खाएगा, और अगर कोई मिर्ची वाला चने मिल गए तो उसे भी खाएगा। मतलब दोनों तरह से जो सेटिस्फेक्शन में रहता है, वे सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। देखो, जैसे बहुत प्यारा हमारे मेंटर्स एग्जांपल देते हैं ना, खाना पक रहा है, कड़छी हिल रही है, क्या हम पका रहे हैं या कड़छी पका रही है, है ना? इस चीज को हमें समझना होगा। हम कुछ नहीं कर रहे, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हम शरीर से कर रहे हैं, शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, और अंदर से हम बिल्कुल फ्री हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इस पॉइंट को हमें समझना होगा। हरी हरी बोल। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज।
हरी बोल। पॉइंट 7, यज्ञ के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। हरी
हरी हरी बोल। यज्ञ, यज्ञ शब्द आते ही ना हमारे दिमाग में पता क्या आता है? हवन कुंड में आहुतियां। जब हवन कुंड में आहुतियां डलती है ना, तब बोला जाता है स्वाहा, स्वाहा, है ना, तब आंसू भी आते हैं। तो आंसू कब आते हैं? यज्ञ का दूसरा अर्थ सैक्रिफाइस, है ना। देखिए, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के नाम पर बहुत लोग घबरा जाते हैं। देखो, वर्ल्डी लाइफ में भी जब हमने कुछ पाना होता है, तब भी तो हम बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं ना। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होना पड़, उसने सोचा हुआ है कि पढ़ना है मुझे, अच्छे नंबर लेने हैं, टॉप करना है, तो भी तो उसको सैक्रिफाइस करना होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कट डाउन, है ना, बाहर सोशल मीडिया पर उससे भी थोड़ा कट, टीवी देखना, है ना, ये सब चीजों को करता है ना सैक्रिफाइस। लेकिन डिवोशन के नाम पर हर कोई सैक्रिफाइस को हवा बना देता है। वो क्या कहेंगे? अरे, सत्संग में आ गया या मैंने माला करना शुरू की तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये हम नहीं समझते कि भगवान यहाँ कह रहे हैं यज्ञ के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख की आकांक्षा हम सब रखते हैं, लेकिन एक्चुअल सुख कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डिवोशन में। और डिवोशन क्या है? सैक्रिफाइस। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई मॉर्निंग का सत्संग लगाता है तो वो नींद का सैक्रिफाइस करेगा ना, तभी तो वो सत्संग तक पहुंचेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई मान लीजिए डिस्ट्रक्टिव में ही अटका रहे और कहे कि मैं डिवोशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो फिर वो उसी की गलती है, क्योंकि उसने डिस्ट्रक्टिव से सैक्रिफाइस नहीं किया। तो भगवान हम सबको मैसेज देना चाहते हैं, अगर सुखी होना चाहते हो तो पहचानो, क्योंकि डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें डिस्ट्रक्टिव का त्याग करना होगा, या शॉर्ट में कहा जाए कि तुम्हें अपनी हैबिट्स में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज।
हरी हरि बोल। पॉइंट 8, ज्ञान में किया गया यज्ञ भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है, सभी कर्म यज्ञों की पूर्णता अलौकिक ज्ञान में होती है। हरी बोल।
तन मन धन सब कुछ तेरा, हरी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। बचपन से ही आरती रट रहे थे, मीनिंग कहाँ पता चला? गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अब हमने समझा कि प्रभु निमित्त मात्र के भाव से जो भी है वो तुम्हारी खुशी के लिए यूज कर रहा है। तो ये क्या है? ज्ञान में किया गया यज्ञ परमात्मा की खुशी के लिए भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। देखिए, दान तो हम पहले भी करते थे, लेकिन किस भाव से? मैं तो अगर अपनी बात कहूं तो क्या कहूंगी, किसी को दो चपातियां दे दी, है ना, तो क्या सोचते थे? मैंने अच्छा किया, मैंने उसको खाना खिलाया, है ना। लेकिन अब भगवान जी की दया से, जैसे भगवान जी की कृपा से मेरे हस्बैंड के साथ मुझे धाम यात्रा का सौभाग्य मिलता है, तो मैं उनको भी बड़ा बड़ा आभार कहूंगी। वो हमें लेके जाते हैं। पहले लगता था कि मैं पुण्य कमा रही हूँ, जो धाम यात्रा करने जा रहे हैं साथ में उनकी लाइफ का जो पुण्य है ना, एक हिस्सा वो मुझे भी मिलेगा। लेकिन अब मुझे पता क्या लगता है कि प्रभु आपने कितनी कृपा की, आपके प्यारे प्यारे भक्तों को लाने का माध्यम आपने हमें बनाया। ये कब समझ आया? जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े, है ना। तो ये सारे कर्म जो भी आप करोगे अलौकिक ज्ञान से ही पूर्ण होंगे। जब अलौकिक ज्ञान आपके जीवन में आएगा, अंदर से भाव क्रिएट होगा कि प्रभु मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं, आपने मुझे माध्यम बनाया, उसके लिए आपको शत शत नमन है, शत शत आभार है। ओनली निमित्त मात्र का भाव हमें क्रिएट करना है, बाकी भगवान हमारे माध्यम से जो करवाना चाहेंगे वो करवाएंगे। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो समझ के अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेनिफिट देगा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज मैम।
हरी हरी बोल। पॉइंट 9th, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए क्योंकि वही हमें अलौकिक ज्ञान से अवगत करवा सकते हैं। हरी हरी
हरी हरी बोल। यहाँ पर भगवान ने आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने के लिए कहा है। अगर हम मटेरियल लाइफ की बात करें तो फ्रेंड क्या हमें वहां गुरु की जरूरत नहीं होती? मुझे लगता है कि पल पल में हमें कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए। अगर किचन में खाना पकाना है तो उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए। शादी के बाद कैसे अपने घर वालों के साथ रहना है उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए, है ना। या पढ़ाई में कुछ अचीव करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, उसमें भी तो गाइडेंस चाहिए। यहां भगवान मैसेज देना चाहते हैं, अब कौन सी गाइडेंस लेनी है तुम्हें? आध्यात्मिकता की। और उसके लिए क्या करना होगा? गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, है ना। देखिए गुरु की शरण में जाना, यहाँ पर गुरु की इंपॉर्टेंस को भगवान बताते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं तो हमारा फोन है, हम इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा है, दुनिया भर का। गूगल को खोलिए, जो मर्जी इससे बुलवा लीजिए, वो बता देगा ठीक गलत सब कुछ बता देगा, है ना। और मान लीजिए इस फोन की बैटरी हो गई डाउन, ठीक है। अब प्लग से डायरेक्ट तो हम इसको ऑन नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक चार्जर चाहिए, है ना। चार्जर फोन में स्विच करेंगे, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फोन चार्ज होगा और फिर हम इसमें इसको ऑपरेट कर पाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में, है ना। देखिए भगवान तो हर जगह है। हम जब रामायण करते हैं तब हमें पता चलता है कि राम रूप में, अखंड ज्ञान में भगवान कण कण में विराजमान है। लेकिन ये ज्ञान हमारे तक कब पहुंचता है? जब चार्जर रूपी, है ना, चार्जर रूपी गुरु हमारे जीवन में आता है। और उससे भी ऊपर हमारा प्रयास, मतलब चार्जर अगर हमने फोन में लगा लिया और पीछे से प्लग को ऑन ही नहीं किया, यानी प्रयास ही नहीं किया, तो फिर क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए गुरु हम पता किसको बना लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में? जो हमारी डिजायर्स को पूरा कर लेते हैं। अरे गुरु महाराज जी मुझे बेटा चाहिए, वो थोड़ी सिद्धियां जानते हैं, कोई प्रसाद देंगे, ये लड्डू खा लो और तुम्हारे घर बेटा हो जाएगा, है ना। कोई गुरु लक्ष्मी के लिए, कोई किसी को वशीकरण के लिए भी जाते हैं, है ना। लेकिन असली गुरु की यहां पर बात की जा रही है। असली गुरु कौन? असली गुरु जो हमें हमसे मिलवाता है, जो हमें अपनी चेकिंग करने पर मजबूर करता है। उसकी वाणी में कुछ ऐसी पावर होती है जो यहाँ यहाँ अटैक करती है कि मैं तो बहुत गलत हूँ, ये जो बता रहे हैं ये सब तो मेरे साथ हो रहा है। हम में से बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैसेज बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। जब हम पहली बार, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरे शिक्षा गुरु निखिल जी, नीलम जी, ये भी मेरे फर्स्ट मेंटर हैं, नीलम जी फर्स्ट मेंटर है, इनके माध्यम से फर्स्ट बार भगवद गीता पढ़ी, निखिल जी के माध्यम से पढ़ी, तो सेल्फ इतना ज्यादा अपने आप को एनालिसिस की कर पाई कि मैं कितनी गलत हूं, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे कई सालों से दीक्षित थी, भी ध्यान ही नहीं गया। मेरे लिए गुरु का कॉन्सेप्ट उनकी फोटो पर हार चढ़ा दो, सुंदर सुंदर कपड़े पहना दो, है ना, कुछ पैसे दान कर दो, इतना ही सिर्फ रह जाता है। देखिए दीक्षा गुरु वैसे तो एक होता है ना, लेकिन शिक्षा गुरु हमारे अनेक होते हैं, और स्पेशली वो शिक्षा गुरु जो हमें हमारा आईना दिखाते हैं कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, और फिर आप सोचने पर मजबूर होते हो कि नहीं अब मुझे चेंज करना है, अपने आप को बदलाव करना है। और देखिए कुछ प्रयास करने के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आप इस रास्ते पर चलते जाते हो, फिर आप जब अपने अंदर बदलाव देखते हो ना, तो बहुत प्यारी हल्की सी मुस्कान आपके फेस पर रहती है। थैंक यू प्रभु, आपने मुझे गुरु से मिलाया, एटलीस्ट चाहे मुझ में 100 गलतियां हैं पर मैं 2 पर तो विजय प्राप्त कर पाई ना, किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो अध्यात्म के रास्ते में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है। श्रीमद् भागवतम में जितने भी महान महान संत महात्मा भक्त हुए, चाहे ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी, प्रचेता या कोई भी, बहुत लंबी लिस्ट, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन हुए, नारद जी, है ना। नित्यानंद महाप्रभु वो भी गुरु का रोल निभाते हैं। अगर आपके पास गुरु नहीं है, है ना, गुरु नहीं है तो आप श्री कृष्ण को गुरु मान लीजिए, है ना। और टाइम जब आएगा ना कोई ऐसा गुरु भगवान आपकी लाइफ में भेज भी देंगे, आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे आपके अंदर ग्रहण करने की थोड़ी सी प्यास तड़प पड़ेगी ना, भगवान से आप प्रेयर करोगे तो भगवान आपके जीवन में गुरु को भी प्रकट कर देते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है ना गुरु बिना गति नहीं, स्पेशली मेंशन किया जाता है। जब हमें समझ नहीं होती, हम गुरु को भौतिक रूप से देखते हैं, बाहरी शारीरिक रूप से देखते हैं, किसी ने भगवे चोला पहने हैं, टीका लगाया है, वो उनको सिद्धियां प्राप्त है, वो आबरा कटाबरा करते हैं, कुछ मिठाई फल दे दिया, आपकी लाइफ चेंज हो गई, नहीं। आध्यात्मिक रास्ते पर वही गुरु जो हमें, जैसे हमारे गोलोक एक्सप्रेस में हमारे फाउंडर्स कहते हैं, गोलोक एक्सप्रेस की दीक्षा सिर्फ और सिर्फ यही है, उनकी शिक्षाओं पर चलना। हम गलती कहां कर देते हैं, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जा सकता है, हमारा हाथ पकड़कर प्रभु से मिलवा सकता है, डायरेक्ट हम भगवान से नहीं मिल सकते। तो इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर अभी भी आपके पास गुरु नहीं है तो कृष्णा को गुरु मानिए, भगवद गीता के प्रिंसिपल्स, इनकी शिक्षाओं पर चलिए, भगवान जी आपको साक्षात प्रमाण करेंगे कहां आपके गुरु हैं। हरी हरी बोल, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मैम। हरी बोल,
हरी बोल। पॉइंट 10, श्रद्धावान आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता है जबकि श्रद्धा विहीन का विनाश हो जाता है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। फेथ, देखिए नवदा भक्ति की पहली सीढ़ी फेथ, श्रद्धा रखनी होगी। अभी आपको इतना सारा ये भगवद गीता का ज्ञान दिया जा रहा है और आगे भी आने वाले दिनों में दिया जाएगा, जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक आप आध्यात्मिक शांति की अनुभूति नहीं करोगे। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो, श्रद्धा बहुत जरूरी है। देखिए दुनियादारी में भी कोई रिश्ता अगर निभाना हो ना तो फेथ तो रखना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ भगवान हमें समझाना चाहते हैं जो शांति तुम चाहते हो वो किससे प्राप्त होगी, रेगुलरिटी से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आप सबको कहा था ना कि थोड़ा सा सत्संग करने से ये शांति प्राप्त नहीं होगी, निरंतर आपने 4S पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ हमारा मॉडल सुना भी होगा, आप दोबारा से सुनिए उसको। रेगुलर सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, फिर आप अपने बिहेवियर में देखेंगे। आप बैठे हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कोई आपके पास नहीं है, अकेले हो, फिर भी आपको लग रहा है वाओ कितनी प्यारी फीलिंग है। ये है आध्यात्मिक शांति। लाइफ में बहुत कुछ घट रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कह रहे हो प्रभु आप मेरे साथ हो, है ना। देखिए फेथ डिवेलप करना बहुत जरूरी है। अगर गुरु के प्रति भी आप फेथ नहीं करोगे ना, जैसे गुरु कुछ समझा रहे हैं, अगर आप सोचो पता नहीं इनका क्या फायदा है, ये क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, है ना, फेथ बाजार से नहीं मिलेगा, फेथ आपको खुद ही डिवेलप करना होगा। शास्त्रों में भी तो प्रमाणित है ना, एकलव्य उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, फेथ रखा, है ना। वैसे फिजिकली द्रोणाचार्य ने उनको कुछ नहीं सिखाया लेकिन उनको फेथ था ना, और जब द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया तब भी उन्होंने एक मिनट के लिए भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि आप मुझसे ये मेरा अंगूठा क्यों मांग रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो। कभी भी गुरु की बातों पर, अध्यात्म के रास्ते में जो भी बातें हमें समझाई जा रही हैं, उन पर क्वेश्चनिंग नहीं करनी। ये क्यों कहा जा रहा है, कभी कभी हमारे गुरु हमारी गलतियों पर हमें डांटते भी हैं, है ना। कभी ऐसा लगेगा कि पार्शियल है ना, कभी ऐसा लगेगा कि मैं उससे ज्यादा लगाव करते हैं। नहीं, गुरु सबके, उनको गुरु को सबको पता होता है कि कैसा कैसा किसके साथ रखना है ना। हमें कभी भी श्रद्धा को लूज नहीं करना, यही भगवान हम सबको बताना चाहते हैं। फेथ रखेंगे तभी इस लंबी यात्रा के पड़ाव में हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, फेथ ना करके जैसे देखो हम सब, हमारे मेंटर्स हमें बताते हैं कि हम सब गोलोक धाम में भगवान के साथ बड़ा इंजॉय कर रहे थे, भगवान झूले पर बैठे थे राधा रानी के साथ। हम हो सकता है उनके चरणों की कोई घास, कोई रेत का कण, कोई फूल, कोई कांटा, ये सब थे, है ना। आत्मा रूप में वहां सब कुछ जीव है, सजीव है। वहां हमने फेथ लूज किया ना, विश्वास नहीं रखा भगवान का कि भगवान क्यों बॉस है। जरा सा फेथ हमने लूज किया तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने 84 के गेड़ में उलझ गए। अगर हम इसी जन्म में अब ये श्रद्धा को वापस डिवेलप ना करेंगे, जैसे कि हमारे मेंटर्स कहते हैं कि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु अभी अभी होके गए हैं और कलयुग की एज पता कितनी है, 432,000 वर्ष। आगे आने वाले 10,000 वर्ष तक तो ये जो गोल्डन पीरियड है ऐसे ही चलेगा, है ना। कभी कोई ये भी कह सकता है कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में मैं श्रद्धा डिवेलप कर लूंगा। नहीं, इसी जन्म में श्रद्धा को डिवेलप करना होगा, यही जन्म में विश्वास रखना होगा कि मुझे वापिस गोलोक धाम मेरे गुरु लेकर जाएंगे, वही लेके जाएंगे, वही वहां का एंट्री टिकट मुझे दिलाएंगे। ये फेथ डिवेलप करना होगा। इस फेथ पर जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आध्यात्मिक शांति को फील करोगे। दुनियादारी में कुछ भी हो रहा हो, आपका अंदर नहीं हिलेगा, आपको सुख आएगा सिर्फ और सिर्फ डिवोशन में, है ना। और फिर भगवान ने नेक्स्ट लाइन में बोला, जो श्रद्धा विहीन होंगे उनका तो विनाश हो जाएगा। देखिए, डाउट, दुर्योधन ने डाउट किया, कुल सहित उसका नाश हो गया, है ना। रावण ने डाउट किया, कुल सहित उसका नाश हो गया। तो मैं यही कहूंगी कि अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें हमारी बीमारी डायग्नोस करके बताता है, हमें परहेज बताता है, दवाई देता है, उसी तरह से हमारे गुरु ने हमारी भवबंधन रूपी बीमारी को डायग्नोस किया है और उसके लिए हमें परहेज बताया है। डिस्ट्रक्टिव छोड़ो, डिवोशन करो, और साथ ही साथ कौन सी गोली दी है, हरि नाम की। इस गोली से ही हमारा पार लग जाएगा। ये फेथ हमें डिवेलप करना है, ये फेथ से आगे बढ़ना है। और क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत आनंद आया आपको सुनना, अपने आप में एक दिव्य आनंद की अनुभूति है। बहुत प्यार से, बड़े भाव से आपने हमें आज का ये चैप्टर करवाया, अलौकिक ज्ञान। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे जैसे रेपिटेशन करते गए वैसे वैसे अब कुछ कुछ परसेंटेज में ये मुझे अच्छे से समझ आने लगा है। और आज रेणु जी को सुन के और ज्यादा मुझे क्लियरिटी हुई है। तो जैसे रेणु जी ने हमें बताया कि हमारी ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये हमारी जन्मों जन्मों से चली आ रही है, लेकिन हर बार हम क्या गलती करते हैं, हर बार हम लोग जो है वो मटीरियल वर्ल्ड की भी को भी साथ में लेके चलते हैं, और साथ में हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, और फिर हम लोग जो है वो अपने कर्म इस तरह से करते हैं कि पाप पुण्य में हम बार बार फंसते जाते हैं और जन्मों पे जन्म हमारे होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान ने एक बात कही है कि जो भगवान का भक्त है या फिर जो भगवान का मित्र है, भगवान उसको वो ज्ञान देते हैं। तो ये अपने आप में हम सबको खुश होना चाहिए, ये कितनी बड़ी बात है जो भगवान ने यहाँ हम सबके लिए कही है। और भगवद गीता में भगवान ने ये भी कहा कि कोई विरला ही है जो इस मतलब सुनता तो हर कोई है लेकिन कोई विल नहीं है जो इस मार्ग पे आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पे मैं गोलोक एक्सप्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हम सबको हाथ पकड़ के इस दिव्य मार्ग पे आगे लेके जा रहे हैं, और आगे ही नहीं लेके जा रहे हैं, हम सब इस ये जो इतना गूढ़ ज्ञान है इसको इतनी सरल भाषा में यहाँ हमें समझाया जा रहा है। जैसे आज रेणु जी ने कितने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आज हमें ये सारी बातें सिखाई है, तो आई एम श्योर हम सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है कैसे हमें कर्म करने हैं, किस तरह से हमें समर्पण भाव रखना है अपने गुरु के प्रति। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि हमें ये ज्ञान इस तरह से मिल रहा है कि आज हम इस ज्ञान के साथ खुद भी जी पा रहे हैं, हम दूसरों को भी ये स्प्रेड कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पे कि जैसे रेणु जी ने भी बताया कि चार तरह की कृपाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जी हरि कृपा। हरि कृपा है जैसे भगवान ने कहा कि जो मेरा मित्र होगा भक्त होगा उसको मैं ये ज्ञान दूंगा। तो हम सबके ऊपर हरि कृपा हुई है तभी हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से हम ये ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। तो फिर दूसरा आता है कि शास्त्र की कृपा यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान यानी शास्त्र की जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तो वो भी हम यहाँ पे इजिली कर पा रहे हैं। फिर तीसरा होता है गुरु कृपा। शास्त्र की कृपा तो हो गई, हरि कृपा भी होगी, लेकिन जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ रेणु जी ने भी कहा कि गुरु एक शरीर नहीं होता, एक वाणी होता है जो अपनी वाणी के माध्यम से हमें बताता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, कौन से भाव हमें रखने हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमें अच्छे से बताया जाता है डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, जो कि मेन चीज है। अगर हमने इस चीज को अपनी लाइफ में उतार लिया तो ऐसा हो नहीं सकता हमारा उद्धार ना हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव भी कर रहे हैं और साथ में अगर हम कुछ कुछ मात्रा में डिवोशन भी कर रहे हैं तो फिर वो ही जन्मों पे जन्म है और उसी अंधकूप में हम बार बार फंसते रहेंगे, बार बार हमारे जन्म होते रहेंगे। लेकिन अगर हमने ये पकड़ लिया डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करनी है, हमें खुद को डिफाइन करना है कि कहाँ कहाँ हम डिस्ट्रक्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, बस उनको हमें जो है अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना है। इजी वे है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हम इजीली जो हमारे गुरु हमें कह रहे हैं हम उसको कर पाएंगे। तो फोर्थ आ जाती है आत्म कृपा, जैसे मैंने कहा। तो जब तक हम लोग आत्म कृपा नहीं करेंगे, देखिए हरि कृपा होगी ये प्लेटफॉर्म मिल गया, हरि कृपा हो गई तो हमें ये ज्ञान भी जो इतना गूढ़ है। यहाँ पे कितने सारे डिवोटीज जो कहते हैं कि हम इतने टाइम से भगवद गीता पढ़ रहे थे लेकिन हमें अपने भी यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है तो ये ज्ञान इतनी सरल भाषा में हम सबको मिल रहा है, तो वो इजिली उस चीज को समझ पा रहे हैं, हम सब समझ पा रहे हैं। यानी हरि कृपा भी हो गई, हमारे ऊपर शास्त्र की कृपा भी होगी, वो किसके माध्यम से हुई, गुरु कृपा से होगी, और गुरु कृपा तो भर भर के हम सबके ऊपर हो रही है, लेकिन हमने खुद को बस सीमित रखा सुनने तक, हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। सुनने तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ रेणु जी ने भी कहा कि सुनने का भी अपने आप का एक महत्व है, हमें शांति मिलती है, हमें पता चलता है, लेकिन जब हमने सेल्फ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, यानी कि वो स्टूडेंट जिस जो स्कूल में तो पढ़ के आता है लेकिन घर पे आके अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करता तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो जितना भी शार्प क्यों ना हो। कई बार हमें अहंकार होता है कि हमें ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, हमें बहुत सारी नॉलेज हो गई है, लेकिन वो नॉलेज तब तक जीरो है जब तक हम लोग उसको सेल्फ इम्प्लीमेंट ना करें। तो उसके लिए क्या है, हमें अपने ऊपर आत्म कृपा करनी पड़ेगी। तो जब हम आत्म कृपा करेंगे तब जैसे ही यहाँ पे रेणु जी ने हमें बताया कर्म अकर्म, जो सुनने में हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे हम होमवर्क के ऊपर, होमवर्क में टॉप प्रायोरिटी पे आता है नाम जाप, जैसे हम नाम जाप के ऊपर अपना फोकस करते हैं हम देखते हैं कि जो ये ज्ञान इतना मुश्किल लगता है वो हमें परसेंटेज में आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है, हम लोग उसको अपने आप को उस ज्ञान के ऊपर चलने के लिए सक्षम कर पाते हैं अगर हम 4S के ऊपर रेगुलरिटी के साथ वर्क करें। तो इट्स वेरी कंपल्सरी कि हम सब अपने ऊपर आत्म कृपा करें और उस आत्म कृपा के माध्यम से फिर हरि कृपा और आत्म कृपा, गुरु कृपा, ज्ञान कृपा, जब ये चारों का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलौकिक ज्ञान जो है वो हमें समझ ना आए। तो इसमें जो मेन लास्ट में हमने जो पॉइंट किया कि इसके लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी है कि हमें फेथ होना चाहिए। कैसा फेथ? फेथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है तो हम, क्योंकि हम तो अपने मन की सुनते हैं, मन तो हमेशा हमें भटकाएगा, तो हम अगर बात बात पे डाउट करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा भगवान ने, ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान ने, है ना, अगर हम इस तरह के अलग अलग तरह के डाउट अपने अंदर लाएंगे तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हमें खुद को ओपन करना है, आंखें बंद करके, जैसे यहाँ रेणु जी ने उदाहरण तौर पे हमें बताया, द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण दिया जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो हमें डाउट नहीं करना है, हमें अपने आप को ओपन रखना है। और ओपनली जब हम भगवान के ऊपर जब फेथ कर लेते हैं, जब हमारे अंदर संभाव आ जाता है, सुख और दुख में भगवान की खुशी के लिए हम सब कुछ करने लग पड़े, तो वो ही लाइफ होती है। कुछ नहीं चेंज हो रहा है, वो ही लाइफ है। लेकिन उस लाइफ में जब सेंटर पॉइंट पे भगवान आ जाते हैं, भगवान की खुशी के लिए हम अपनी सारी ड्यूटीज करने लगते हैं, तो ऑल सडन हमारा जो ये जो हमारा ये दुनिया है वो एकदम से बदल जाती है। नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की ओर चले जाते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग अपने होमवर्क के ऊपर पूरा फोकस करें, 4S के ऊपर पूरा फोकस करें, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ चेंज ना हो। इसलिए कंपलसरी है कि हम सब रेगुलरिटी के साथ इन सत्संग को सुने, और जो हमें यहाँ पे गोलक एक्सप्रेस जो भी शिक्षाएं दे रहा है, जो भी गोलोक एक्सप्रेस हमें शिक्षाएं दे रहा है, उस शिक्षाओं के ऊपर हम खुद को चला पाए, यही हमारी जो हमारे गुरु को जो सच्ची जो हमारी गुरु को हम लोग सच्ची अपनी एक दीक्षा दे पाएंगे। सो इट्स वेरी कंपल्सरी हम सबके लिए। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत बहुत आनंद आया आपके माध्यम से, आज फिर से ये अलौकिक ज्ञान हमें समझने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे रिव्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ निधि जी हैं सोनीपत से, तो उनसे उनके रिव्यूज जानते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। हरी हरी बोल।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। भगवान श्री हरि के चरणों में शत शत नमन, अपने गुरुओं के चरणों में बहुत बहुत नमन। आज भगवान श्री हरि की कृपा से मुझे ये बहुत प्यारी सेवा अपने गुरुओं के माध्यम से मिली। मैं निधि सचदेवा सोनीपत से। फ्रेंड्स, आज का सत्संग बहुत ही आई ओपनर सत्संग था। जैसे कि हम सभी ने अभी रेणु जी के माध्यम से और रचना जी के माध्यम से ये जाना कि हम सभी के ऊपर हरि कृपा हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमेशा हम ये सभी कहते हैं कि भगवान प्लीज हमारे ऊपर कृपा करो, तो फ्रेंड्स आज हमने जाना कि भगवान जी ने तो हम पर कृपा कर दी है, क्योंकि भगवान की कृपा की वजह से ही फ्रेंड्स आज हम सत्संग सुन रहे हैं, और इतना बड़ा जो हमारा पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी लर्निंग्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लायक बने हैं। फिर फ्रेंड्स हमने जाना कि गुरु की कृपा, तो फ्रेंड्स हम सभी बहुत सारे फिजिकल सत्संग निखिल जी के साथ, नितिन जी के साथ, रूपाली दीदी के साथ और जो है प्रीति भाभी के साथ अटेंड कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर हमने सत्संग अटेंड किया, तो फ्रेंड्स गुरुओं की कृपा को हमने वहां फील किया, वो आनंद जो हम इतने दिनों पहले वहां पर जाकर फील करा हमने, वो आज तक भी हम जो इसको फील कर रहे हैं। वो पावर्स जो हमने उस समय महसूस की, उसका जो है हमें आज भी रियलाइजेशन है। तो सभी तो हमारे पर गुरुओं की भी कृपा हो चुकी है, तो फ्रेंड्स अब हमारी ड्यूटी क्या है, कृपा करना अपने ऊपर, यानी कि करना और पाना। जितना जितना हम अपने ऊपर जो है वर्कआउट करेंगे, उतना उतना जो है हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रोंग बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि हमें जो है नाम जाप की महिमा को जाना, कि हमें नाम जाप को बढ़ाना है। नाम जाप ही एक ऐसी डोज है जिससे हम भगवान के साथ अपना स्ट्रोंग कनेक्शन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हम नाम जाप को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो अंदर की नेगेटिविटीज हैं वो दूर होती चली जाएंगी। जैसे कि हमने जाना कि भगवान जो है धरती पर अवतार लेते हैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, तो फ्रेंड्स हमारे लिए क्या अधर्म है, हमारी नेगेटिविटीज, हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज का जो जाल बुनते हैं हम हर वक्त, वो जो है हमारा फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो हमें जो है नाम जाप को बढ़ाकर इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर करना है। फिर फ्रेंड्स हमने जाना कि कर्म करने हैं और कर्मों के साथ आसक्ति नहीं लगानी, विरक्त भाव से, निष्काम भाव से हमें कर्म करने हैं। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते चले जाएंगे तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे। और एक बहुत अच्छी टर्म हमने जानी, यज्ञ। यज्ञ को सुनते ही वाकई रेणु दीदी मेरे मन में भी जो है वही आहुति और यज्ञ कुंड जो है वो ध्यान में आया, क्योंकि हमने रिपीट नहीं करते हम जब सत्संग, तो हम भूल जाते हैं उन टर्म्स को। तो आज हमने जाना यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस करना। तो फ्रेंड्स, हम बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, तो अगर हम भगवान का प्यार पाना चाहते हैं तो हमें डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जो है अपने रास्ते को बढ़ाना है। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को कम करके डिवोशनल एक्टिविटीज को अपने लाइफ में इंक्रीज करते रहना है, और निमित्त भाव से जो है सारे कर्म करने हैं, क्योंकि हम कुछ भी करने लायक नहीं है। फ्रेंड्स, हम तो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलने लायक अगर भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो। तो हमें भगवान की कृपा को महसूस करना है। और फ्रेंड्स हमने जाना कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। गुरु के माध्यम से ही फ्रेंड्स हम जो है अपने अंदर की नेगेटिविटीज को जानकर अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने लायक बनते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले फ्रेंड्स मैं कभी भी अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पाती थी। अभी भी बहुत गलतियां करती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स अब जो है रियलाइजेशन का जो पार्ट है वो आ जाता है सामने कि नहीं, मेरी यहाँ गलती है, मुझे जो इसको सुधारना है। और धीरे धीरे अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो वाकई हम अपने ऊपर कृपा करने लायक बनते ही चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जाना फेथ। जब हमें भगवत गीता, जो ये हमारा सरल रूप चल रहा है भगवत गीता का सार रूप, जब ये स्टार्टिंग हुई तो हमें जो है उसके टीचिंग्स के बारे में बताया गया कि जब भी हम अपने ग्रंथों को पढ़ें तो हमें जो है उस पर विनीत भाव से विश्वास रखना है, फेथ रखना है। जब तक हम फेथ नहीं रखेंगे तब तक जो वो ज्ञान है, जो भगवान के जो वचन है, जो गुरुओं की जो वाणी है, जो इनको भगवान ने माध्यम बनाया है, उनको हम समझ नहीं पाएंगे और अपनी लाइफ में हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें विनीत भाव से इस ज्ञान को सुनना है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना है। और हमारा जो फोरेस्ट पिलर, बहुत ही प्यारा पिलर, सत्संग साधना सेवा और सदाचार। सत्संग में सुनी हुई बातों को सिर्फ हमें जो है वहीं तक सीमित ना रखकर साधना का जो दूसरा पार्ट है हमारा, कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उसको, उससे जो है हमारा दिव्य ज्ञान बढ़ेगा, और उसको फिर हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, उस ज्ञान को जो है हमें दूसरों में बांटना है और प्रचार प्रसार करना है, यानी कि सेवा भाव अपने अंदर लाना है। और जैसे जैसे हम इस थ्री पिलर्स को कवर करेंगे वैसे वैसे हमारे बिहेवियर में चेंज होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत आनंद आया निधि जी, आपके विचार जान के भी, और बड़ा ब्यूटीफुली आपने अपने पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करके हमें बताया। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अधर्म समझते थे, कि मतलब जब भी अधर्म की बात आती थी तो हमें लगता था कि जो दुनियादारी में जो भी मार काट हो रही है, जो भी लोग जो भी पाप कर्म कर रहे हैं वो ही अधर्म है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस ने हमें ये समझाया कि जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर जो ये कौरव है, कैसे हम उनके ऊपर विजय पाके किस तरह से हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हमारे लिए वो भी अधर्म है। और साथ ही आपने यहाँ पे बताया कि किस तरह के हमें भाव रखने हैं, किस तरह से अगर हम 4S के ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अपने जीवन को जो है वो जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम लीड कर पाते हैं। तो हम सबका हमेशा भाव यही रहना चाहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो अगर हम इस भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो फिर चाहे हमारे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, वो हमेशा हम एक संभाव होके इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने नियर डियर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी प्रेयर करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हमारे जो ग्लोकियंस हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल्स के लिए, आपके नियर डियर, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए माला डेडिकेट करेंगे। मेरी आज की 6 मालाएं आप सबके लिए डेडिकेट हैं। तो और मैं अपने ग्लोकियंस से भी कहना चाहती हूँ कि वो भी अपनी अपनी माला डेडिकेट करें। सो थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वंदना जी के पास चलते हैं टेक्सास, और उनसे उनके विचार जानते हैं। हरी हरी बोल वंदना जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही आनंद आया आज सत्संग को सुनकर। और मैं अपनी बात कहूंगी कि मैंने भगवत गीता का भी समझना है, ये मुझे कभी भरोसा नहीं था कि भगवत गीता का मैं एक अक्षर भी समझ पाऊंगी, लेकिन गोलक एक्सप्रेस में हमें इतने इजी लैंग्वेज जो है भगवत गीता समझाई जा रही है कि मैं तो समझ पा रही हूँ। मेरी डॉटर जो है 12 ईयर की, वो भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही है। अच्छे से सरल लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है, तो अब सार रूप में जो भगवद गीता सिखाई जा रही है, अब तक हमने चैप्टर 4 कर लिए हैं, मैं बड़े आसानी से अब कह पाऊंगी, कोई मुझसे पूछे कि चैप्टर 1 में क्या है तो मैं कहूंगी कि चैप्टर 1 में अर्जुन जी कंफ्यूज है, कोई पूछे चैप्टर 2 में क्या है तो मैं कहूंगी चैप्टर 2 में अर्जुन ने शरणागति ली, कोई मुझसे पूछेगा कि चैप्टर 3 में क्या है तो मैं बताऊंगी कर्म योग है, कर्म कैसे करना है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, जो कर्म प्रभु को अच्छे लगे प्रभु को सेंटर में रख के ये कर्म करने। और आज हमने समझा अलौकिक ज्ञान है ना, ये ज्ञान किसको मिलेगा, प्रभु ने साफ कहा है कि जो प्रभु के मित्र हैं भक्त हैं उनको ये ज्ञान मिलेगा। मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई वेल ऑफ है या बहुत अच्छे से रिच या अमीर, गरीब या अमीर जो है उससे इस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, प्रभु ने साफ कहा है कि जो भी मेरा भक्त होगा मित्र होगा उसे ये ज्ञान जो है वो मिलेगा। और मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ कि जो मैं ये ज्ञान ले पा रही हूँ, तो इन दोनों कैटेगरी में से एक में तो मैं आती हूँ, या तो मैं प्रभु की भक्त हूँ या फिर उनकी मित्र हूँ। और मैं सच्ची में बहुत हैप्पी फील कर पा रही हूँ कि चाहे मुझे कुछ समझ आए चाहे ना आए, परंतु गुरु के माध्यम से मुझे ये ज्ञान जो है मिल रहा है। उसके बाद मैंने आज ये समझा कि जो है हम धर्म और धर्म का स्थापना करने और अधर्म का विनाश करने प्रभु हर युग में जो है जन्म लेते हैं, कभी डायरेक्ट लेते हैं और कभी इनडायरेक्ट लेते हैं। रेणु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्कूल वाली एग्जाम्पल वॉज टू गुड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच में रेणु जी ने आज बताया कि कौरव एंड पांडव, ब्लैक डॉग व्हाइट डॉग, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये सब हमारे अंदर ही है, तो इन सबको दूर, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, नाम भगवान का सहारा लेना है। जैसे ही हम नाम जाप शुरू करते हैं तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है अपने आप ही जो है डिक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद मैंने समझा कि कर जो है जिस तरह का हम पूजा करेंगे, जिस जिस भाव से हम पूजा करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर हम देखिए नैनू जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम फुल डे डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज करते रहेंगे, फेसबुक चलाएंगे, गॉसिप करेंगे, निंदा चुगली बुराई करेंगे, तो फुल डे पे वही आना है, राइट, वही हमारे सराउंडिंग में घूमेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम एक घंटा सत्संग कर रहे हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं नई नई गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी तब सिर्फ एक घंटा सत्संग करती थी, सैटरडे ओनली, बिल्कुल नए 5 साल पहले। तो मंडे ट्यूसडे सत्संग का असर मुझे रहता था और ट्यूसडे के बाद जो है मैं वापस से दुनियादारी में खो जाती थी। तो उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस सत्संग का फल नहीं मिल रहा था, 3 दिन मेरा माइंड पॉजिटिव रहता था, मैं पॉजिटिविटी से चलती थी। उसके बाद चैप्टर 6 में मैंने सीखा कि जो है अगर हमारा डिवोशन बीच में छूट भी जाता है तो हम जो है नेक्स्ट बर्थ जो है रिच फैमिलीज में लेते हैं। तो मेरा जो लालच था वो तो हटा और मैंने रेगुलर सत्संग शुरू किया एवरीडे, मतलब जब अब तो यूट्यूब में रेगुलर सत्संग आते हैं, मैंने रेगुलर सत्संग शुरू किया। तो मैं नोटिस करती हूँ कि इसकी वाइफ जो है पूरा पूरा वीक ही रहती है फुल डे, क्योंकि मैं रेगुलर सत्संग करती हूँ, डिवोटी एसोसिएशन में रहती हूँ, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को मैंने पहचाना है कि क्या क्या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है। वो कहते हैं ना बाल्टी में छेद, वो पहचान पाई हूँ मैं कि अगर मैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करूंगी तो मैं भगवत धाम तो नहीं जा पाऊंगी, जैसे निंदा चुगली। तो अभी परसेंटेज में इन चीजों में बहुत फर्क आया है, वो सब गोलक एक्सप्रेस की वजह से उन्होंने हमें बताया कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती क्या है। मुझे तो पता ही नहीं था कि टीवी देखना या फिर गॉसिप करना या फिर सोना है तो सोते ही रह जाना, इसको डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं इस पे वर्क कर रही हूँ अब श्री हरि की कृपा से। और आश्रय और जो है क्या कहते हैं फेथ जो है ये मैंने आज के सत्संग में सीखा, पूर्ण फेथ होना चाहिए और आश्रय हमें सिर्फ और सिर्फ श्री हरि पे ही रखना चाहिए। आज के चैप्टर में अगर मुझे कोई पूछेगा कि 4th चैप्टर में क्या है तो मैं बड़े इजी से बोल दूंगी कि अलौकिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसको लेने के बाद हम जो भी कर्म करते हैं उसको करने का हमें अहंकार नहीं होता बल्कि हम अपने आप को निमित मात्र समझते हैं। तो थैंक यू रेणु जी, रचना जी और निधि जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही प्यारा सत्संग। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी बोल। बहुत आनंद आया वंदना जी आपको सुन के। और जब आप कह रहे थे ना कि 1st चैप्टर में कोई पूछेगा कि क्या है, 2nd में 3rd में, तो वो तो सच में अमेजिंग था। और जब आपने ये भी कहा कि मेरी डॉटर भी इस ज्ञान को बड़े अच्छे से ले पा रही है, समझ पा रही है, तो ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अंशिका को सुनना ही अपने आप में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और देखिए ये हमारे ये जो गोलोक एक्सप्रेस की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे ज्ञान इतनी सरल भाषा में स्प्रेड किया जा रहा है कि चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, हर कोई जो है वो इन जो बातें हैं, जो ये गूढ़ ज्ञान है, इसको आसानी से समझ भी पा रहा है, अपने लाइफ में उतार भी पा रहा है। तो ये भगवान श्री हरि की स्पेशल ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर, और हमें हमेशा इस ब्लेसिंग को चेयर अप करना चाहिए, हमेशा हमें भगवान का आभारी होना चाहिए। और आपने साथ में अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स के साथ भी हमें ये बताया कि किस तरह से अब आप अपनी लाइफ में डिवोशन को अच्छे से कर पा रहे हो, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। और देखिए हम सब वो कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन के ऊपर हम सब वर्क कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में हम सब जो है वो अब इजिली बैलेंस बना के मटीरियल वर्ल्ड की ड्यूटीज को भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं। और उसमें हमें अब ये समझ आ रहा है कि भाव कैसे रखने हैं, भगवान की खुशी के लिए करना है, सेवा भाव हमें अपने अंदर लाना है, और साथ ही साथ हम लोग मटीरियल वर्ल्ड और फिर इसी तरह से अपने जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके ऊपर हम परफेक्ट एग्जाम बैलेंस बना के अपनी लाइफ को लीड कर पा रहे हैं। तो ये हम सबके ऊपर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा है, और हमारे गुरुजनों के माध्यम से वो कृपा हम सबको मिल रही है, उसके लिए मैं गोलोक एक्सप्रेस का सदा आभार व्यक्त करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आज के सत्संग में। तो चलिए अब हम अपने भजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंचन जी के पास चलते हैं करनाल, और उनसे एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। हरी हरी बोल कंचन जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच रेणु जी, रचना जी, आपके माध्यम से आज हमने अलौकिक ज्ञान के बारे में समझा। और सच में मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के सीसीटीवी कैमरे के आगे घूम रहे हैं, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जब घूमते हैं तो हम मतलब हम सब कुछ ही भूल जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं होती। लेकिन अब जाना जाता है कि अब गोलोक एक्सप्रेस से जब से हम जुड़े हैं, मैंने सच में मतलब पहले मैं बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। खुद के मन के अकॉर्डिंग चलती रहती थी, सही है तब भी सही है, अगर गलत किया है तो वो भी सही है क्योंकि वो मेरी नजरों में सही है। लेकिन अब जो हमारा दृष्टिकोण है वो गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से चेंज हुआ है, देखने का नजरिया बदला है। जो कर्म में हम अपना खुशी के लिए जो करते थे उसको समझा है कि खुशी के लिए नहीं, अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर करना है, प्रभु के खुशी के लिए कर्म करना है, इस बात को बड़े अच्छे से समझा है। मैं अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल भी ऐसी सोच वाली थी कि बस घूमने फिरने, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की खुशी के लिए हर चीज को करना है। इवन भगवान के मंदिर में भी जाना है ना, तो वहां पर भी मैं खुद के लिए ही मांगती थी कि प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, खुद की डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही मांगती थी। लेकिन आज के सत्संग से सच में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज रेणु जी बात कर रहे थे कि चंबा में जैसे जन्मदिन होता है, पार्टीज होती हैं, मैरिज पार्टी, रिसेप्शन, सब कुछ होता है, बट जो गोलोकियन हैं वो सत्संग के माध्यम से इंजॉय करते हैं। ये भाव कहाँ से आया? ये भाव गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जुड़कर ही आया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नहीं जुड़े हैं वो पार्टी करते हैं, मतलब वो अपने आप को एक अलग लेवल पर ही लेके जाते हैं। मतलब कहने को आज बहुत कुछ है, लेकिन एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज हमें यह भी बताया कि गुरु की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। देखिए वही बात है कि एक मधुमक्खी को जब ऋषिकेश पहुंचना है तो उसको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान के शरीर के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर चढ़ जाते तो कुछ ही मतलब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में वो पहुंच जाती है। इसी प्रकार जब हम गुरु के शरण में होते हैं, गुरु की चरणों में होते हैं, तो भवसागर से पार हो जाएंगे। सच में एक प्रभु से जो हमारा मिलन है वो गुरु ही करवाता है। ऐसे गुरुओं के चरणों में शत शत नमन करती हूँ, और एक ग्रेटिट्यूड, एक हम्बल होकर जो चलने वाला भाव है, ये प्रार्थना करती हूँ भगवान श्री हरि से कि प्रभु आंखें नीचे करके ही चलाना सिखाइएगा, कभी अहंकार वाला भाव मत लाइएगा, अगर आए तो खत्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज का सत्संग डिवाइन आई ओपनर सत्संग। तो मैं अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हरि बोल, हरि हरि बोल। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे उकारा बलि बलि जाऊं, तुझ पे उकारा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं तेरे प्रेम में रंगी, प्रेम में रंगी मैं तेरी भक्ति में तेरी, तुझ पे कान्हा बलि बलि जाऊं, साज सवेरे तेरे गुण गाऊं, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तम कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, तुझ पे कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, कान्हा तेरा रूप अरूपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखिया तेरा दर्शन चाहे, प्रेम में रंगी मैं तेरे प्रेम में रंगी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल हरे हरि बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंचन जी बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, और सच में जो भगवान जी के रंग में रंग जाते हैं फिर उन पर कोई और मटेरियल रंग चढ़ता ही नहीं है, तो हमें भगवान जी की आरती करते रहना है और उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत प्यारे तरीके से हमारे जो रचना जी हैं उन्होंने होस्टिंग की, बहुत प्यारे रिव्यूज वंदना जी के, निधि सचदेवा जी के, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगी वेद प्रकाश जी का भी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर नीलम मैम ने बहुत प्यारे तरीके से उसे संभाल लिया, तो थैंक यू सो मच मैम। और साथ ही साथ व्यूअर्स का, और जो हमें पॉडकास्ट से यूट्यूब से देख रहे हैं, आपका भी बड़ा बड़ा आभार। आज स्पेशली मेरी माला जो है आठ माला, हम सबकी ओवरऑल स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन हो, हम आगे बढ़ पाए, तभी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ हम बढ़ते रहें, तो ये मेरी प्रेयर्स रहेंगी। और एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने फाउंडर्स का, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और नीलम मैम, इनका भी, जिन्होंने ये अलौकिक ज्ञान हम सबको समझाया और समझ के भगवान की कृपा से हम भी माध्यम बन पा रहे हैं दूसरों को समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अलौकिक ज्ञान तो आपको मिल गया है, और भगवद गीता का अगला पड़ाव कृष्ण भावना भावित कर्म या भक्ति युक्त कर्म कहा जाए, वो कैसे करने हैं और उसका सार कल प्रेजेंट करेंगे नीलम मैम इसी समय पर शाम के 8 बजे इंडियन टाइम। तो मिलते हैं कल। तो हरे कृष्णा करते हुए आज के सत्संग को कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर मन मंदिर हर हर मंदिर।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।